शांति ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत राप्ती माल आपको तीन दिन से मिल रहा है, आज चौथा दिन है। आज हमारे बीच में हरियाणा पानीपत से भ्राता भरत भूषण जी विराजमान है। सभी जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत है। भ्राता जी हमारे पंजाब जोन के मुख्य भाई हैं, और आप केवल पंजाब जोन के ही नहीं, आप पूरे यज्ञ के ही मुख्य भाई हैं। मधुबन की भी आप फैकल्टी हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में आपको हमारे बड़े दादी दीदियों और वरिष्ठ भाइयों के द्वारा बुलाया जाता है यहाँ सेवा के लिए, और आप साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पानीपत में एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, रिट्रीट सेंटर जैसा है, ज्ञान मानसरोवर। हमारे पंजाब जोन में रिट्रीट सेंटर नहीं बोलते कि यह सोनीपत रिट्रीट सेंटर, बट है वो रिट्रीट सेंटर जैसा ही, ज्ञान मानसरोवर। उसके आप डायरेक्टर हैं, वहाँ भी ऑल इंडिया लेवल के कार्यक्रम होते रहते हैं। केवल भारत में ही नहीं, आप विदेशों में भी सेवा पर आपको बुलाया जाता है। लगभग 25 देशों का आपने भ्रमण किया है, और भिन्न भिन्न देशों में निमंत्रण पर आपने वहाँ भी जा करके इंडियंस और नॉन इंडियंस जो भी हैं, उस देश के भी वासी हैं, तो सबकी बहुत सेवा आप करते रहते हैं। सेवा और ज्ञान योग बड़ों का हमेशा ही ये सब प्रिय सब्जेक्ट रहते हैं, और आप भी बहुत दिल से, हालांकि एज भी चलो सीनियर सिटीजन तो हो ही चुके हैं कब के, लेकिन उसके बावजूद भी आपका उमंग उत्साह यूथ जैसा है, और बहुत एनर्जेटिक आपकी क्लास होती है। तो आज का आपका विषय है निरंतर योगी कैसे बने। सबकी इच्छा होती है ना मेरा योग हमेशा लगा रहे, उसके लिए क्या हमें ध्यान रखना है। आपने अपने जीवन में हर तरह की स्थितियों को पार भी किया है। कहते हैं कितना भी संघर्ष हो, हर्ष भरा निष्कर्ष हो, तो उसका जो निष्कर्ष है हमेशा वो हर्ष भरा रहा है आपकी तपस्या के बल से। और ये भी कहा जाता है यहाँ हवाओं का आना जाना है, हमारी भी जिद है दीपक वहीं जलाना है। तो ऐसी एक दृढ़ता की शक्ति से भरपूर भ्राता जी आज हमारे बीच में विराजमान है, तो इसलिए फिर से भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सुनेंगे भाई साहब।
ओम शांति। पांडव भवन की भट्टी में जो पहली बार आए हैं हाथ खड़ा करो। अच्छा, आज तक कभी मौका नहीं मिला, सारे फर्स्ट टाइमर हैं। वाह वाह वाह, आगरा से पहले भी कभी भट्टी हुई है? वैसे कभी नहीं, फर्स्ट भट्टी मिली है। वाह, आपके श्रेष्ठ भाग्य की आपको बधाई हो। पांडव भवन की भट्टी के लिए सब तड़पते हैं ना, तड़फन होती है ना, जाएं भट्टी मिले पांडव भवन की, पांडव भवन की। कमाल तो ये है, कितने भी स्थान बाबा के खुलते गए, ज्ञान सरोवर बना, हॉस्पिटल बना, नीचे भी शांतिवन और धूम मची रहती हजारों की बीस बीस, परंतु पांडव भवन का महत्व तो आज भी कम नहीं हुआ। देखो सारे नीचे ग्रुप आते हैं, अपनी यात्रा अधूरी समझते हैं जब तक कि चार धाम की यात्रा नहीं कर ली। कितना महत्व है। और ये भट्टी जब से चली है बहुत महत्व बढ़ गया है। हरेक को होता है बस पांडव भवन की भट्टी करनी है। आज का विषय क्या बताया, निरंतर योगी कैसे बने। तो आपको 10 टिप्स बताएंगे हम निरंतर योगी बनने की। अच्छा, आपको एक बढ़िया बात ये बताएं, उन 10 में से एक की भी आपने मास्टरी कर ली ना, आप निरंतर योगी बन जाएंगे। नहीं, जैसे कोई कहते हैं ना, कोई ऐसा मेरे को गुर बता, कोई ऐसा दां बता जिससे मैं विजय प्राप्त कर लूं। ऐसे 10 गुर मिल जाएं तो आप सोचो और क्या चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। किसी एक को भी अगर आपने पकड़ लिया, कांस्टेंट योगी, निरंतर योगी बन जाए, ठीक है। क्योंकि योगी तो जीवन का लक्ष्य है। आज भी मुरली में आया, क्या आया आज योग पर, क्या आया मुरली में, देखूं किसको याद है। सारा मदार क्या था पूरा, बाबा का महावाक्य क्या था, बाबा ने कहा पढ़ाई का सारा मदार याद पर है। क्योंकि पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट और उन चारों का भी मेन मुख्य जो है वो याद। फिर दूसरा याद के लिए क्या कहा, याद ही सबसे मुख्य है। तीसरा क्या कहा, बाबा ने कहा तुम्हारी याद है बहुत गुप्त। चौथा क्या कहा, बाबा ने कहा नहीं जो आज की मुरली में आए, बाबा ने कहा याद है तुम्हारा अजपा जाप, बाकी सब तो जाप करते हैं, अजपा जाप, ठीक है ना। तो बाबा ने कितना, हम बच्चों को इस पे, शायद ही कोई मुरली हो जिस दिन बाबा इस पर अटेंशन ना खिंचवाते हो। कल भी कहा था ना, कल क्या कहा था याद पे, बाबा ने कहा टाइट होके ना बैठो ये तुम्हारा सहज योग है, इजी बैठो जैसे बैठो, लेकिन बाप की याद में मग्न हो। तो रोज बाबा कितना हम बच्चों का टेंशन खिंचाते, कभी कहते बच्चे तुम्हारी खाद निकल जाएगी, कभी बाबा कहते कि बच्चे तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, याद का जौहर चाहिए बच्चे तब तुम्हारी तीर लगेगा। फिर बाबा ने कितना हम बच्चों को याद का महत्व बताया है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, एक बार बाबा ने कहा था एक कौन सी सब्जेक्ट में परफेक्ट बने, सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट, तब भी बाबा ने याद के सब्जेक्ट कहा, है ना। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत सहज है बच्चे, हाँ याद मुख्य है। अच्छा, आज याद की जो निरंतर योगी बनने की युक्ति, योग का शौक थोड़े ही ब्राह्मणों में होता है, काम करते हैं जी, बिजी बहुत रहते हैं जी, टाइम नहीं मिलता जी, अमृत वेला वैसे मिस हो जाता है, क्लास में भागे दौड़े पहुंचेंगे, क्लास कर लिया, फिर उसके बाद दिन भर बहुत बिजी रहे। किसी किसी का चार्ट तो दिन भर में 1 घंटा भी याद में नहीं बैठते। इंद्र सभा में बैठे ना, पांडव भवन इंद्र सभा, सच्चाई से किसी भी कारण से, धंधे के कारण, बिजी होने कारण, काम कारण, काज के कारण, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते वहां लौकिक में जब रहते हैं। जो 1 घंटा भी नहीं रोज बैठ पाते वो हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो सच्चाई से, है ना। देखो कितने बहने भी हैं, भाई भी हैं, सोचो आप कैसे रात को चार्ट बाबा को देते होंगे, आंसू नहीं निकलते सारा दिन, 1 घंटा भी नहीं बैठे, बताओ। तड़फ चाहिए ना, तड़फ होगी तो व्यक्ति रहेगा, लगन चाहिए, तड़फ चाहिए। अच्छा हर प्रकार के हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं कम से कम कुछ हो जाए 3 घंटा जरूर बैठते हैं स्पेशल योग में। चलते फिरते तो हर समय बाबा ने काम दिया हुआ है, लेकिन स्पेशल 3 घंटा जरूर बैठते हैं। अब वो हाथ खड़ा करो, देखो वो भी है, एक ही क्लास में एक ही पढ़ाई एक ही पढ़ाने वाला, लेकिन सब मिलते हैं। तो हमारे ऊपर एक चाह होनी चाहिए, शौक होनी चाहिए। आपको एक बता दें, शक्कर खोरा शक्कर ढूंढ ही लेता है। जिसको शौक है ना, वो ये नहीं कह सकता टाइम नहीं मिलता। टाइम मैनेजमेंट वाले कहते हैं टाइम इज नो इश्यू, इट इज ओनली द इश्यू प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जिस चीज को मनुष्य प्रायोरिटी देता है ना, उसके लिए टाइम निकाल ही लेता है। हमारे ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी रहती, जैसे बहन ने परिचय दिया, एक तरफ रिट्रीट सेंटर, वहां भी हर महीने 3-4 टॉप के प्रोग्राम कर देते हैं। अभी एक महीने में 3-4 प्रोग्राम हुए वहां, संत सम्मेलन हुआ 27 जुलाई, फिर 11 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे 1000 आए, फिर उसके बाद 4 सितंबर टीचर डे 1100 टीचर आए। अभी 27 सितंबर को यहां से आतम भाई जा रहे, बट्टी है, तो पूरा उसे बिजी रखते हैं। फिर बाबा के 55 सेंटर भी हैं पानीपत सब जोन में, किसी को भी कोई कंस्ट्रक्शन है ये है कुछ है प्रॉब्लम है झट फोन आएंगे, ठीक है ना। और इंजीनियर विंग का भी जिम्मेवारी रहता और भी जोन का भी रहती सेवाएं, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि हर मास कुछ भी हो जाए 108 घंटा प्रति मास बैठ के योग जरूर करना है। और करता हूं वर्षों से, पर प्लान फिर वैसे ही कर लेता हूं कि रोज मैं 3.5 घंटा करूंगा तब जाके 108 घंटा होगा। सुबह सुबह टाइम अच्छा मिल जाता है, 3 बजे उठ जाते हैं, 3 से 5, 5:30 तक 2 घंटा तो उसी वक्त हो जाता है। मुरली से पहले 1/2 घंटा करते हैं, 2.5 घंटा शाम को, फिर शाम को कभी बिजी है सेवा में, दिन में चाहे रेस्ट टाइम चाहे किसी टाइम, हमें अपने टारगेट पे पहुंचना है, ठीक है ना। ये संकल्प दादी प्रकाशमणि ने दिया था। दादी प्रकाशमणि एक बार एनुअल मीटिंग में 2004 की बात है, इतने प्लान सुनाए सबने, ये प्लान वो प्लान वो प्लान। मैं पूछती हूँ तपस्या कब करोगे, हमने 14 साल तपस्या की, आप 14 महीने तो करो। दादी कहती है 108 घंटा 14 महीने तपस्या। पूरे यज्ञ में सर्कुलर निकला था, हमने पहली बार लक्ष्य रख के सिटिंग योग 108 घंटा प्रति मास किया, पूरे 14 महीने किया। ना केवल हमने किया, हमने 50 को कराया। फिर उसके बाद तो शौक आ गया, अरे ये तो बढ़िया चीज है, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो कभी हो कभी ना हो कभी ध्यान रहे, ये लक्ष्य लेने से तो सही टिक जाती है सब। फिर ये शौक लगा रहा, फिर नहीं छोड़ा। पांडव भवन में आए और पांडव भवन की भट्टी गाई हुई है, कुछ तो संकल्प करके जाओ। करेंगे संकल्प, करेंगे। चलो मैं 108 नहीं, आपको थोड़ा कंसेशन देता हूं, आप 3 घंटा कम से कम रोज का जरूर करो। 90 आवर बनता है ना महीने का, है मुरली क्लास योग थोड़ी होता है, वो तो ज्ञान का सब्जेक्ट है। हाँ वो योग काउंट करेंगे, सिटिंग योग चाहे अमृत वेला है चाहे वो है, 3 आवर मिनिमम जरूर करना है। करेंगे जो कहते करेंगे, दोनों हाथ खड़े करो। अच्छा आपकी ये फोटो मैं धर्मराज को भेजूंगा। करो करो करो, है ना, थैंक यू। ठीक है, सबके लिए क्लैपिंग करो, अच्छी बात। बाबा दिखाएगा, पांडव भवन में संकल्प किया था। अक्सर करके रिजल्ट ही है, जो भी दृढ़ संकल्प करते हैं कुछ दिन 15 दिन फुल अटेंशन रहता है, फिर उसके बाद फुल अटेंशन से फिर फुल कट जाता है, अटेंशन रहता है, फिर उसके महीने के बाद लूज अटेंशन हो जाता है, कुछ कुछ मिस होना शुरू हो जाता, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नो अटेंशन, फिर उसके बाद भूल ही जाते हमने कोई संकल्प किया था, और लास्ट में फिर टेंशन। चलो ट्रैफिक कंट्रोल करो और बाबा को संकल्प पक्का करो, हाथ में हाथ देके। तो कभी दो घंटा हो जाए ना, अगले दिन से चार करके लास्ट टोटल महीने में 90 आवर्स आना चाहिए, परंतु ट्राई करो तीन मिनिमम रोज रहे। बाबा ने मर्यादा भी बताई है, 3:30 उठते हैं, रिकॉर्ड बजता है 5 बजे तक, डेढ़ घंटा तो यही हो जाता है, 1 घंटा नुमा शाम, आधा घंटा मुरली से पहले, हो गया 3 घंटा। तो गुड नाइट मेडिटेशन भी करते हैं, है ना। ये तो हो गई शौक की बात। अब 10 टिप्स नोट कीजिए। सबसे पहला है वैराग्यवृत्ति। वैराग्यवृत्ति, बिना वैराग्य के निरंतर योगी नहीं बन सकते। हमेशा मुरली में आता है, देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर माम एकम याद करो। विधि बताई ना बाबा ने, पहली विधि क्या बताई, भूल। पहली विधि वैराग्य की पैदा की, इस देह, पहली देह से वैराग्य, फिर देह के संबंधियों से वैराग्य, देह की दुनिया से वैराग्य, फिर आत्मा निश्चय कर, फिर बाप को याद कर। तो स्पष्ट हो गया, पहले कट, पहले वैराग्य सब तरफ से। देह भान में फंसे रहेंगे तो कैसे योगी बन, जब तक इससे मन नहीं हटता उधर योग लग नहीं सकता। अगर इसके राग में फंसे हुए हैं, देह और देह की दुनिया में, इससे वैराग्य आ जाए। बाबा के कितने वैराग्य के शब्द होते हैं, छी छी दुनिया है, बच्चे छी छी शरीर है, पतित, इस पतित दुनिया में बच्चे क्या लेना, एहसास। मम्मा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी और वो कहते थे मम्मा से, तो मम्मा कहती एहसार संसार का क्या समाचार पढ़ना, जो है ही एहसार, जिसका कोई सार ही नहीं है। तो इससे वैराग्य नहीं होगा ना, बार बार क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इन्हीं चीजों में जिनकी बुद्धि घूमती रहती है ना, संसार में क्या हो रहा है, हर वक्त इसी में लगे हुए हैं बुद्धि में, या पॉलिटिकल या कोई और क्या क्या चीजें हो रही, या नेचुरल कैलोमिटी या कुछ कुछ जो भी, तो वे वैराग्य आए। बस उन्हीं संकल्पों में समय बर्बाद करना है क्या। बाबा ने सब कुछ बता दिया, आज नहीं बताया मुरली में, कल भी बताया, बच्चे जल उपद्रव मचाएगा, प्रैक्टिकल मचाया ना जल ने उपद्रव, पंजाब हिमाचल जम्मू सब चपेट में आ गया। आज मुरली में क्या कहा, नेचुरल कैलेमिटीज, बच्चे ये देखो तुम्हारी अर्थक्वेक ऐसी आएगी, बच्चे सब दब जाएंगे। अब थोड़ा दुखी होते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे बाबा ने तो कब से बताया है, एक युगल परसों फोन किया, कहते जी हमसे तो देखा नहीं जाता हालत, बाढ़ में पशु भी बेचारे डूब के घूम रहे, मनुष्य का भी क्या हाल, कारें तो जैसे कोई किश्तियां घूम रही हो, उसमें उल्टे सुलटे होके लटक गई हैं। तो ये चीज वैराग्य के देख, बाबा कहते कुछ तो मरेंगे आपदा के कारण, कुछ खाली आपदा को देख के ही मर जाएंगे। कहते हमें तो देख के इतना वो होता है कि बस, बोलिए और ये प्रैक्टिकल बात है, कोरोना से सारे नहीं मरे हैं, वो तो 10% मरे, लेकिन कोरोना की समय ऐसी भयावह स्थिति हो गई थी कि जिसको भी कोरोना है कोरोना, क्योंकि बीमारी ही ऐसी थी जिनके लिए सारी उम्र लगाई, पति पत्नी बच्चे पत्नी बच्चे सब, अब कोरोना हुआ नहीं है इसे ले जाओ हॉस्पिटल, सब ऐसे बीमारी ऐसी थी दूर भगाओ, तो उसको डिप्रेशन हो गया, पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, डिप्रेशन से ही ज्यादातर गए भय के कारण ही। जयंती बहन से पूछा हमने 140 देशों में ना सेंटर, मैं कहा जी अपना कोरोना के कारण कितने बाबा के बच्चे जो है एडवांस पार्टी में गए हैं, कहती कोरोना पॉजिटिव तो हर देश में हुआ, अनेकों को हुआ, पर शरीर एक का भी नहीं छूटा। देखो ये है ना योग का प्रयोग, क्योंकि हाँ ना, बस जो डरे नहीं तो मरे नहीं, जो डरे वो अधिकतर बाबा के बच्चों की तो मेंटल स्टेज अच्छी है ना। मेरे को भी हुआ था, डबल पॉजिटिव हो गया था, तो आशा दीदी को फोन किया ओआर से, मैं कहा दीदी डबल पॉजिटिव हो गया, दिल्ली में था तो मैं ओआरसी समझता हूं, आ जाऊं, कहते आ जाओ। अब वहां पे मुझे खुश नसीब बिल्डिंग है एक, वहां ठहरने को कहा गया, वहां मेरा भव्य स्वागत हुआ। किसने किया पता है आपको? वहां पहले ही 40 पॉजिटिव वाले थे। ओआरसी में कोरोना में कम से कम 80 को पॉजिटिव हुआ, उस वक्त 40 थे। एक स्पेशल बिल्डिंग बना दी थी खुश नसीब, जिसको होता था उसमें पहुंच जाता। जब मैं गया तो सारे खुश कि वाह अब हमारा लीडर भी आ गया, क्लास कराने वाला बढ़िया भी कराएगा, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से तो डर होता नहीं वहां। तो क्या जो जिसको कोरोना हो जाए उसकी मौज हो जाए, फर्स्ट क्लास क्लास से बट ठीक हो, दीदी भी जूम पे मिलती थी आनंद। और हम यूट्यूब पे आपको पता है रोज दिल में छपने वाली मुरली सुनाते हैं, कौन कौन सुनते हैं आप में? सुनते हैं ना मेजॉरिटी, और एक अव्यक्त मुरली भी है, वो कौन कौन सुनते हैं? काफी है ना, तो 25,000 आत्माएं लाभ लेती रोज उस वक्त जो है। तो मैं बाबा को बाबा ये सेवा ना छोड़ाना प्लीज, ये इतनी बड़ी सेवा विश्व में, बाबा सारे सेंटरों पे बाबा के बच्चे जैसे देखो अब 50% लाभ ले ही रहे होते हैं, मैं बाबा ये सेवा ना छोड़ाना मेरे से, इतनी अच्छी सेवा आपने दी हुई है। तो जो रिकॉर्डिंग करता था ना मेरी, उसको भी बाबा ने पॉजिटिव कर दिया। तो एक दिन भी पिछले 5 साल में एक दिन भी मिस नहीं किया। देखो मैं कह रहा था ना, जो आपकी इच्छा होगी वही होगा। तो वैराग्य, उस वक्त वैराग्य आता है। देखो कोरोना के टाइम एक रिहर्सल ऐसा हुआ, कैसे सब बाबा के बच्चे भी लग गए थे, दिन रात योग करने, क्लासेस सुन रहे हैं, योग सबको लगा, बस आ गया टाइम। हमें
तो नहीं लगा,
हाँ मतलब वही। तो पहला बताया वैराग्यवर्ती, दूसरा फिर है विदेही, विदेही स्थिति माना मतलब बिना आत्मक स्थिति के आप निरंतर योगी नहीं बन सकते, आत्मक स्थिति आपकी होनी चाहिए। अगर आप, मैं कहूंगा कभी भी एक घंटा योग करना है तो पहले 10-15 मिनट आप आत्मक स्थिति का ही अभ्यास करें, कैसे मैं आत्मा दौड़ी आई हूं, बाबा की याद में बैठूं, किस तरह इस देह से अलग अनुभूति होनी चाहिए, अलग हूं, बिल्कुल इससे डिटैच हो जाएं, अपने स्वरूप को देखते देखते मग्न हो जाएं, और अपने उस दिव्य गुणों को देखते हुए कैसे प्रेम स्वरूप हूं, अनंत उस रियलाइजेशन आत्मक अनुभूति, वो बहुत जरूरी है। विदेही बनेंगे तब बाबा से योग सही लगेगा। बाबा ने एक बार कहा था, योग लगाते हैं बच्चे, अमिया तो है निराकारी और बीबी है साकारी, तो मिलन कैसे हो? तो जरूर बीबी को भी निराकारी बनना पड़े, ये देह उतार, फिर बिंदु का बिंदु से मिलन हो। तो ये योग का एक सबसे मुख्य पॉइंट है विदेही स्थिति, उसका अभ्यास करना है, अच्छी तरह से अभ्यास करना है। हर वक्त इसके लिए पूछते रहो क्वेश्चन चार पांच अपने से, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, मैं आत्मा देख रही हूं, कौन सुन रहा है, मैं आत्मा सुन रही हूं, कौन बोल रहा है, मैं आत्मा बोल रही हूं, इस शरीर के माध्यम से कौन कर्म कर रहा है, मैं आत्मा कर रही हूं। हर वक्त देह को ना देख के आत्मा देखने का अभ्यास एक नेचुरल हो जाए, प्रैक्टिस करते करते नेचुरल हो जाए। और हो नहीं सकता आत्मा बनते बाबा की याद ना आए, अवश्य आएगी। आपकी हाइट कितनी है? 5। आपकी 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 6। अच्छा, सारे के सारे फेल हुए कि नहीं फेल? कितना आत्मा आत्मा करके पूछ लो, आत्मा से हाइट कितनी है? एक आत्मा कहती 6 फुट, एक आत्मा कहती 5 फुट 5 इंच, एक आत्मा कहती थोड़ा इतना भी नहीं विचार चला कि आत्मा की क्लास कराते कराते हाइट का क्या चक्कर आ गया। और किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हाइटलेस हूं भाई साहब, चलो इतना ही बोल देते मेरे शरीर की हाइट 5 फुट 6 इंच है, इतनी बॉडी कॉन्शियसनेस चिपटी हुई है, कितना भी आत्मा बन ले फिर आप 5 फुट 4 इंच बन जाएंगे, फिर 5 फुट 4। तब एक सेंटर पे लिखा था, जूते के साथ देह अभिमान का जूता भी बाहर निकाल के फिर अंदर जाओ। आप देख लेना, आप आत्मा बने होंगे फिर आप बाहर निकलेंगे फिर 5 फुटे बन जाएंगे। ये घड़ी घड़ी अभ्यास, तब बाबा कहते इस देह भान को तोड़ना है, टूटेगा तभी जब बिंदु बन के रहेंगे, ज्योति बिंदु बोल, मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा भट्टी कर रही हूं। पुने पुने इसको भूल जाना शरीर को, फिर योग बड़ा अच्छा लगेगा। तो पहला था वैराग्यवर्ती, दूसरा है विदेही स्थिति, तीसरा है विभिन्नता, विभिन्नता माना भिन्न भिन्न, विभिन्नता मतलब कि मन का स्वभाव है भिन्न भिन्न, उसको पसंद है, एक ही तरीके से मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी तो कुछ दिनों में बोर हो जाएंगे। और विभिन्नता में कभी पिता का संबंध, कभी टीचर का संबंध, तो कभी सतगुरु का संबंध, कभी विदेही स्थिति, तो कभी बीज रूप अवस्था, कभी फरिश्ता स्थिति, कभी आनंद के सागर में डूबे हुए, कभी प्रेम के सागर में, विभिन्न स्थितियों का अनुभव करना, ये विभिन्नता चाहिए, तब निरंतर योगी बन पाएंगे। ठीक है, विभिन्नता लाने के लिए सजेशन है, एक संबंध एक प्राप्ति रोज लेवें, सारा दिन उसका अनुभव करें। एक बार बाबा ने कहा था बच्चे कोई खड्डा खोदते हैं ना, दो दो फुट के 50 खोद दो तब भी नहीं पानी निकलेगा, एक की 2800 फुट का किसी ने खुदाई किया तो पानी निकलता। इसलिए एक संबंध और एक गुण की अच्छी तरह गहराई में एक दिन जाओ, अगले दिन किसी दूसरे में जाओ, तीसरे दिन किसी तीसरे में जाओ। सोमवार को जैसे, आज क्या वार है, शुक्रवार, शुक्रवार को किसका पे सोम से चालू होते हैं, सोमवार को पिता संबंध, क्योंकि शिव बाबा का दिन है वो सोमवार, पिता संबंध और प्राप्ति प्रेम का सागर, बाप का छोटा बच्चा बन के प्यार में डूब जाना है। मंगलवार को टीचर संबंध और प्राप्ति प्राप्ति ज्ञान का सागर, और बुधवार को मां का संबंध और प्राप्ति प्राप्ति रहम का सागर, मां कितनी रहम दिल होती है। बृहस्पतिवार को सतगुरु का संबंध, प्राप्ति सतगुरु वापस ले जाने आया शांति धाम, तो शांति का सागर। शनिवार को फ्राइडे, शुक्रवार को शुक्रिया कौन करती, सजनी करती, साजन का, सजनी साजन का संबंध, शिव साजन में आत्मा उनकी सजनिया, और प्राप्ति अतिंद्रिय सुख का सागर। और शनिवार को बच्चे का संबंध, उस दिन सुबह उठते ही बाबा को बाबा के रूप में ना याद करके क्या कहना है, वतन में पहुंच के ओ मेरे शिवलाल, ओ मेरे मीठे मीठे बाल, गुड मॉर्निंग। और शिवलाल क्या कहेगा, कहेगा पिताजी चिंता ना करो, माताजी चिंता ना करो, ये लाल 21 जन्म तक जरा भी नहीं दुख होने देगा। कितना पेरेंट्स को खुशी होती है किसी का लाल सर्वशक्तिवान बन जाए। नीचे इंजीनियर कॉन्फ्रेंस है, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं उद्घाटन करने, तो उसका लौकिक पिता इस खुशी में बिजनौर से 7-8 और को लेके आ रहे हैं कि मेरा बेटा उद्घाटन करेगा 4000 साइंटिस्ट इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस को। जितनी खुशी उस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर को तो फुर्सत ही नहीं है, जितनी खुशी उसको नहीं हो रही जितनी उसके पिताजी को हो रही है, झूमते हुए आ रहे हैं। होती है ना पेरेंट्स को तो लगता है सब कुछ पा लिया। तो बच्चे का संबंध और प्राप्ति खुशियों का भंडार। लास्ट रह गया संडे, कौन सा संबंध रह गया, एक रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुदा दोस्त। संडे होता है सेलिब्रेशन डे, उस दिन आनंद का दिन आए हो रे, आनंद आनंद का सागर, मित्र का संबंध और आनंद का सागर। वैसे तो जैसा समय वैसा संबंध, लेकिन जो संबंध और जो प्राप्ति जिस दिन पे हो उसका उस दिन 50 बार अच्छी तरह अनुभव, फिर उसी संबंध और गुण का करना। ठीक है, आज किस रूप से याद करेंगे, शुक्रवार को जितना हो सके घड़ी घड़ी शुक्रिया करो, शुक्राना बाबा तेरी शुक्रिया, कितनी ना शुक्रिया करूं शिव साजन की सजनी बनके, और उसके प्यार में आशुक माशुक संबंध, कितना मुरली में बाबा ध्यान के जो भगवान कहेगा वैसे ही करेंगे, कितना आशुक माशुक का संबंध का तरीका बताते, साजन संबंध का तरीका बताते डीप। बाबा तो कहते बच्चे, जब बच्चे उन्हें देखो लौकिक जिस्मानी प्यार वालों को हो जाता है तो बस कुछ सूझता ही नहीं, खाते पीते हर वक्त वो सामने जैसे खड़ा है जाओ उसका लौकिक प्रेमी। क्या बच्चे, वो तो विकारों में गिराने वाले और तुम्हें कितना ऊंचा बनाने वाला ये माशूक, तुम्हें ये याद नहीं रह सकता, तुम्हारी अटैचमेंट उससे नहीं हो सकती। कितना अच्छा बाबा तरीका समझाते हैं। ठीक है, कितने बता दिए? सात कहां से पहुंच गए? सात तो संबंध बताए, तीसरे के सब टॉपिक हैं सात, तीन। नेक्स्ट फोर्थ इज द विनम्रता। विनम्रता निरंतर योगी, योगी का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार, तो विनम्रता बहुत जरूरी है। और विनम्रता कौन सी है? विनम्रता धारण करने के लिए केवल एक शब्द याद करो तो आप विनम्र बन जाएंगे। कौन सा शब्द है वो? कौन सा शब्द है? अहंकार जरा भी ना छुए, कौसों मील दूर भाग जाए, और निरंतर योगी भी बन जाएंगे। एक शब्द है विनम्रता के लिए, वो है करण करावन हार। बाबा है करण करावन हार, एक शब्द ऐसा है जिसमें आत्मक स्थिति भी बन जाती है। करण हार बाबा करण हार है, और करावन हार किससे करा रहा है? मुझ आत्मा से। करावन हार भी, करण हार भी, तो कितना अच्छा करण करावन हार शब्द है। निरंतर योगी बाबा से बार बार कहते, बाबा आप करा रहे हो ना, जो भी काम बढ़िया करोगे बाबा आपने कराया ना। मैं रोज जो रात को कहते हैं ना पत्र लिखो, कौन कौन लिखता है पत्र रात को? थोड़े लिखते हैं, मैं भी कभी नहीं सोता बिना पत्र लिखे, चाहे छोटा लिखूं लिखता है। पर उसमें करता क्या हूं? बस बाबा का यही शुक्रिया काउंट करता हूं सारा दिन के। शुक्रिया बाबा आज सुबह अमृत वेला कितना अच्छा कराया, शुक्रिया बाबा। कल एक आत्मा से बात हुई, उसे ऐसी टचिंग मिली, तो बाबा का वहां भवन बन रहा है मनमोहिनी भवन, उसने 5 लाख ट्रांसफर किया। किसने कराया? किसने कराया? बाबा। शुक्रिया बाबा, इतना बड़ा आज निमित्त बना के आपने सफल कराया, शुक्रिया बाबा आपने ये कराया। हाँ, शुक्रिया बाबा उन आत्माओं को, कितनी कोई ग्रुप आया था 30-40 का स्पेशल मिलने, बहुत दुआएं बाबा ने दिलाई, पर शुक्रिया बाबा, बाबा आपने कराया ना। देखो मुझे आप आगे कर देते, करा तो आप रहे, शुक्रिया शुक्रिया दिन भर बाबा का निकलता रहे, कितना शक्ति मिलती है, कितने योग लग जाता है उसे। तो बाबा ने, तो ये था क्या बताया? विनम्रता। नेक्स्ट है, अच्छा इंटरेस्टिंग ये, 10 के 10 व्यय शब्द से शुरू होंगे। ऑल द 10 पॉइंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द व्यय, ताकि आपको याद रखना आसान हो। 5th पॉइंट फिर विजयी रतन। विजयी रतन मतलब मैं हूं ही विजयी। योग में सबसे बड़ा बाधक जो है ना, मनुष्य के खुद के नेगेटिव थॉट, वो इतने बाधक हैं जो बात ना पूछो। क्या करूं मेरा योग नहीं लगता, क्या करूं मेरा योग नहीं लगता, कहीं हमेशा ही कंप्लेन करते रहेंगे। मुझे तो दिन याद है, एक बार बाबा को कोई अव्यक्त बाप दादा को मिल रहे थे, और बाबा से मिलने का मौका मिला स्टेज पे, उसने यही कहा, बाबा क्या करूं मेरा योग नहीं। कहते भगवान के सामने खड़ी है और बाबा कह रही है और कहती है योग नहीं लगता। ये नेगेटिव थॉट, मैं हूं ही विजयी रतन, मेरा योग नहीं लगेगा और किसका लगेगा। अरे बाबा, बाबा तो मेरे अंग संग कितने पास बैठे हैं, सन्मुख बैठे हैं, हजार भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। बस ये याद रखेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। कौन साथ है? हजार भुजाधारी भगवान साथ। ठीक है, विजयी रतन, मैं विजयी रतन हूं, मेरा नहीं लगेगा और किसका लगेगा। हे माया ठहर, तू कागज की शेर और मुझे डराती है, मुझे बाबा से दुनिया की कोई ताकत दूर कर नहीं सकती। ऐसे ऐसे शुभ संकल्प करो तो बाबा अटैच हो जाएंगे, एकदम बच्चे को हथेली पे ले लेंगे। ठीक है, विजयी रतन। नेक्स्ट है विलीन अवस्था। विलीन अवस्था, विलीन माना अक्सर कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बाबा कहते था तो लवलीन और लोग दुनिया ने समझ लिया विलीन, तो समा जाना, मैं विलीन तो होना है लेकिन किस में? प्यार में, आनंद में खो जाना। दिन में एक दो घंटा ऐसे हो जो बाबा के प्यार में डूब जाएं। ये नहीं थोड़ा सा योग लगा फिर पता नहीं कहां कहां भाग गई बुद्धि, फिर योग लगा फिर कहां 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 भाग गई, फिर योग लगा फिर क्या हुआ। कहीं तो ऐसे विलीन हुए होते हैं बाबा के कमरे में बैठ के भी मजे से सोते हैं। कहती है बाबा की गोद मिलती है, बताओ ये माया के बोल हैं या आपके बोल हैं? बैठेंगे सोफा से या चले गए? कहेंगे कैसा अनुभव है? बड़ी शांति का, क्योंकि नींद में भी तो शांति होती है ना, जैसे वो कहती है बाबा की गोद मिलती है। इसलिए अटेंशन रखना है तो विलीन, बाबा के प्यार में लीन होना है। इतने बाबा के दिल से गुणगाओ, गुणगान करते 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 फिर निरंतर योगी बन जाएंगे, प्यार में लीन हो जाएंगे। क्या कारण? कोई कोई आत्मा है वैसे जिनको रोज ही बाबा की याद में बैठते हैं ना, प्यार में आंसू आते हैं। जिसको डेली बाबा के प्यार में आंसू आते हैं, सच्चाई से हाथ खड़ा करो। नहीं, जिसको डेली आते हैं, डेली वाले चाहिए, डेली वाले खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज, वाह, इनके लिए ताली बजाओ, भाग्यशाली। खैर, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कल से योग करो और आप कहो आज तो कुछ हो जाए आंसू निकाल के छोड़ूंगे। आंसू निकालना लक्ष्य नहीं है, बाबा के प्यार में डूबो। निकले तो भी ठीक, ना निकले तो भी ठीक, हमें तो देह को भूले रहना है। ठीक है, कोई कोई दादियों को प्यार में निकलते थे पर मम्मा एकदम बाबा ऐसे बैठे होते थे पावरफुल। ऐसा नहीं कि प्यार में नहीं डूबे बैठे होते थे, पर जरूरी नहीं हर बार आंसू निकले। मेन तो प्यार में डूबना है, विलीन होना है, तभी मैं कहा बाबा के। और वो कैसे होंगे? जब बाबा के गुणों को अच्छी तरह दिल को लगाएंगे, जब बाबा के एहसानों को याद करेंगे। बाबा कमाल है, आपने क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आप, हमें कितना, मेरा पग पग पे बाबा आपने साथ दिया। ओ बाबा, मैं कैसे भुला सकती हूँ आपको, किन परिस्थितियों में आके आप खड़े हो गए और आपने मुझे हाथ पे ले लिया। कमाल है बाबा आपकी, सारी दुनिया की आत्माओं की आप सदगति कर रहे हैं। ऐसे दिल से बाबा के, बाबा कितना ज्ञान सुना 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 मुझे आपने नॉलेजफुल बना दिया। बाबा के दिल से गुणगान गाना, ठीक है, ये है विलीन होने का तरीका पता होना चाहिए ना। कई बार बाबा कहते नहीं बच्चे, एक ही शब्द है बच्चे, कौन सा? जो सब खजानों की चाबी, कौन सा? मेरा बाबा। या कभी कहते बाबा शब्द ही सब खजानों की चाबी। बाबा कितनी बार किसके मुख से निकलता है, घड़ी घड़ी बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये है, ऐसी आदत पड़ जाए बिना ध्यान रखे भी बाबा निकलता ही रहे। एक बार मेरी क्लास थी विक्रोली सेंटर पे बॉम्बे में, वहां वो डॉक्टर भाई है ना, क्या नाम, सचिन पर्व, उनके एक मित्र थे। क्लास कराया घंटा डेढ़, दोनों का भोजन हमारे साथ था। तो उनका मित्र डॉक्टर भाई बीके था, वो भी कहते बड़े समर्पित किस्म के भाई हो भाई साहब आप। मैं कह नहीं, समर्पित किस्म के तो आप भी हो सब हैं। कहते नहीं। मैं क्यों, कैसे आपने लगाया अंदाज? कहते आपने अभी घंटा डेढ़ क्लास कराई ना, डेढ़ घंटा, 278 बार आपने बाबा बोला। मैं, क्योंकि मैं तो इस ध्यान में था ही नहीं कि मुझे बाबा बोलना है। मैं कहना ऐसा तो मुझे ही नहीं विश्वास था कि मैं इतनी बार बोला है, 278 बार बोला है। कहते मैं क्लास थोड़ी सुन रहा था, मैं तो केवल काउंटिंग कर रहा था। मैंने कहा काउंटिंग कैसे आप ये लक्ष्य? कहते जैसे आपने शुरू किया और आप बाबा बाबा करके बोल रहे थे तो मैंने काउंटिंग शुरू कर दिया। तो तब मैंने कहा ये, खैर मुझे खुशी हुई कि विदाउट कीपिंग अटेंशन, या तो लक्ष्य लेके बैठा हो कि मैंने बोलना है, बिना उसके भी इतनी बार निकला। यही बाबा कहते हैं बच्चे नेचुरल बन जाए तुम्हारे दिल से जिगर से मन से, बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा निकलता रहे। हाँ निकलेगा तो वही, लेकिन वो निकलता तो काफी काफी देर में है, वो खूब निकले, घड़ी घड़ी निकले, पल पल निकले। तो यही है विलीन अवस्था को जो लेके आता है। तो तभी कभी कभी हम काम देते हैं। भक्ति मार्ग में 1,25,000 बार ओंकार मंत्र पढ़ते थे, तो ज्ञान मार्ग में क्या 1,25,000 बार दिल से रियलाइज करके नहीं लिख सकते क्या? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा। चाहे साल में लिखो, दो में लिखो, तीन में लिखो, लेकिन डेली लिखो। और अनुभव, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है जो लिखते हैं ना वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है, लिखेंगे? कौन कौन लिखेंगे? ठीक है, आप इसका रिजल्ट देखना। मैंने बाय द वे एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, 80,000 भाई बहनों ने यही 1,25,000 बार, और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था कि जब आपके 1,25,000 पूरे हो जाएं, जब स्टार्ट करें तब भी मेरे को मैसेज भेजना, फोन नहीं करना, फोन नहीं उठाऊं, और जब पूरे हो जाएं तो भी मैसेज भेजना, मैं कांग्रेचुलेशन दूं। आप विश्वास करेंगे 5,000 के, ये 3 साल पहले की थी, 400 पहले भी, अभी तक भी आते रहते हैं मैसेज। 5,000 का मैसेज आया, हमने 1,25,000 बार लिख चुके हैं। अच्छा हुआ कोई 6 महीने बिजी हो गया, कोई साल, कोई कितना, एक मात। फिर सबने बड़े सुंदर अनुभव सुनाए कि क्या प्राप्ति हुई। एक माता ने बताया, मैं डेली ना 1.5-2 घंटा करती थी, तो इतनी प्रैक्टिस रियलाइज करके लिखती थी, इतनी प्रैक्टिस होगी सारा दिन ही जैसे ये कैसेट ही चलती रहती थी अंदर, हर वक्त ही दिल से निकलता ही रहता था, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यार। तो अभ्यास हो गया ना, प्रैक्टिस होगी, अभ्यास हो गया। अच्छा नेक्स्ट, कितने हो गए? छह. नेक्स्ट सात हो गए. अच्छा छह. नेक्स्ट है विश्व कल्याणी, विश्व कल्याणकारी, मतलब कि बिना बेहद की सेवा के आप निरंतर योगी नहीं बन सकते. बेहद की सेवा में समर्पित विश्व कल्याण हर वक्त चलता रहे. बाबा हमेशा कहते हैं सहयोगी ही योगी है. जो जितना सहज योगी है उसका योग दुआओं के कारण फिर खूब लगता है. सहयोगी ही निरंतर योगी अपना आप बन जाता. हर वक्त बेहद कार्य में सहयोगी बने रहे तो विश्व कल्याणकारी. नेक्स्ट विचार सागर मंथन. विचार सागर मंथन खूब चलना चाहिए, रोज चलना चाहिए. गहराई में जाओ, विचार सागर मंथन करेंगे तभी निरंतर योगी बनेंगे. बाबा ने कहा बच्चे चाहते हैं कि मग्न हो लेकिन मनन नहीं करते. मनन करने लग जाएं तो मगन स्वतः ही हो जाएं. और उसका तरीका क्या है? उसका आधार है बाबा की मुरली. ठीक है, आज की मुरली से जो पांच पॉइंट एट ए स्ट्रेच सुना सकते हैं, जरा हाथ खड़ा करो. है कोई? नहीं ना, भूल जाते हैं. याद रहनी चाहिए और फिर उसका चिंतन तभी चलेगा, फिर उसका मंथन करें. तो बाबा कितने अच्छे अच्छे हम बच्चों को बातें बताते हैं, बुद्धि में ही नहीं होंगी तो फिर क्या करेंगे? फिर तो नहीं चिंतन इतना चल पाएगा ना. बाबा के आज क्या विशेषताएं आई? बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा सदगति दाता है, तुम बच्चों की सदगति करने आया. और बच्चे बाबा ज्ञान का सागर है, कहा ना. और हाँ, और बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य चीज सेवा की पॉइंट क्या सुनाई आज बाबा ने? सेवा की भी कोई पॉइंट आई आज मुरली में? हाँ, चक्र पे तो कहा कि बच्चे सुदर्शन चक्र तुम्हारा घूमता रहना चाहिए. सुदर्शन चक्र अच्छी तरह से घुमाते रहो. ये भी था. और बाबा ने सेवा की पॉइंट कही कि बच्चे तुम बच्चों को अब पहले पहले बाप का परिचय मिला है, तुमको औरों को भी परिचय देना है. ये कहा ना बाबा ने. और माया पे क्या सुनाया आज बाबा ने? हाँ, चलते चलते ज्ञान में फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं. 8-10 साल का होके भट्टियां करके भी हाथ छोड़ देते हैं. हाँ, तो बाबा ने कहा क्यों? माया अंधा बना देती है. कितना जबरदस्त शब्द का, माया अंधा बना देती है. जी, क्रिमिनल आई के कारण. तो बाबा ने कहा इसलिए ये कितना जरूर, बाबा ने कहा इस पे कितना ध्यान देना चाहिए, है ना. और क्या कहा? निश्चय बुद्धि ना होने के कारण ही ये संशय बुद्धि होके छोड़ जाते हैं. फिर बाबा ने कहा कुमारियों को क्या कहा? कुमारियां रक्षा बंधन बांधती, पवित्रता की राखी बांधती. बिना पवित्र बने तुम वापस जा नहीं सकते, है ना. सबसे पहले तो पवित्र बनना है. ये सब कहा ना बाबा ने. और क्या कहा? फीलिंग करना फेल की निशानी. फील कर गए ना, फेल की निशानी. कोई कैसा भी कुछ भी करे, कैसा करे, उल्टा सुलटा कुछ, मेरी स्थिति पे अगर इफेक्ट आ गया तो फील हो गया तो फेल. अच्छा, आप में से कौन है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता? अच्छा, फीलिंग नहीं आती? फीलिंग नहीं आती? गुस्सा फीलिंग एक ही चीज है. फीलिंग में तो हाथ खड़ा किया, फीलिंग नहीं आती. और गुस्सा में नहीं किया. क्योंकि कोई बात फील होगी तभी तो गुस्सा आएगा ना. कोई चीज आपको फील होगी, ऐसा क्यों कहा, तब गुस्सा आए. एक बार की बात बताऊं, परीक्षा तो सबके सामने होती है ना. किसी ने, देखो हर एक के बड़े छोटे सब हैं, किसी बड़े ने कभी कभी आ जाता है, अधिकार भी है, डांट सकते हैं, क्या हुआ, किसी ने मेरे को बुरी तरह से लताड़ा, डांटा, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कोई जस्ट वो कहीं जा रहे थे, मैं अच्छा वहां जा रहे हैं तो इसको भी ले जाओ, अच्छा है खाली जा रही है गाड़ी, उन्होंने उस पर एकदम डांट दिया, भाई पहले तुम अलग से, बुरी तरह जो दूसरा सुन रहा था ना वो तो चले गए, तो उसने कहा कि हिम्मत है आपकी सहनशीलता की भाई, और कोई होता तो रिजाइन दे देता इस व्यक्ति को हमेशा के लिए। मैं कहने इसमें क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलो। मैंने समझ पाया था सचमुच किसी वरिष्ठ को कई बार प्राइवेट चाहिए, नेचुरल को इसी को बिठा दिया, मेरे को अलग से ही पूछना चाहिए, बिठाएंगे तो बातचीत करेगा और वो सारा रास्ता फिर क्या करेगा, उसको जो कुछ मंथन करना है कुछ और करना, तो उनको थोड़ा चाहिए। अच्छा वो फील होने वाली बात थी, फील ऐसा बुरी तरह लताड़ा था, फील हो सकता। अब क्रोध करने वाले को थोड़ी देर में पश्चाताप जरूर होता है, अब हुआ क्या, कुछ वो गया तो रास्ते में पश्चाताप तो हुआ कि भाई ही इज आल्सो सीनियर, इतने वरिष्ठ है ये भी, और मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, यही बात मैं आराम से कह देता, आया होगा उन्हें मन में। अब बात को खत्म करने के लिए ये समझदार व्यक्ति का काम होता है, वो फिर पुनः संबंध जोड़े, तो कोई युक्ति से कोई सेवा की बात सोच के तो फोन किया, हाँ भाई ये पहले फोन किया, अच्छा पहले घंटी बजी, क्योंकि बात ही ऐसा इतना दुर्व्यवहार किया था कि फोन मैंने उठाया नहीं, कुछ घंटी बजी दो तीन, फिर एकदम मन में आया कि भारत भूषण जिंदगी भर तेरा रिकॉर्ड है, कभी फील नहीं किया, अगर आज तूने फोन नहीं उठाया ना इसका मतलब फील तो हो गया ना, तो मैंने झट फिर फोन उठाया, पहले कुछ घंटी बजी नहीं उठाया, फिर उठाया वो पूरा, मैं जी भाई साहब, तो फिर उन्होंने कहा वो ना ये काम है ये, मैं कहा हाँ जरूर, मैंने ये भी नहीं कुछ फीलिंग से बोलूं, मैंने जो उन्होंने राय मांगी सब कुछ ऐसे ऐसे करके, तो ये पक्की प्रतिज्ञा की हुई है कुछ भी हो जाए फील नहीं होना है, किसी से ये नहीं कि कोई ये कह दे आज टोन बदल गया भाई जी आपका टोन नहीं बदलना चाहिए, वही मधुरता वाला टोन, वही रिगार्ड वाला टोन तो क्या पॉइंट चल रही थी, विचार सागर मंत्र, ठीक है, फीलिंग वाली पॉइंट लास्ट वाली किसी ने सुनाई ना, कितने हो गए टोटल, आठ हो गए, नेक्स्ट कुछ आप भी बताओ, वे पे हैं, मैं तो बताऊंगा ही, कोई आप भी मंथन करो विचार सागर मंत्र, मन मत नहीं, वे पे बताने हैं, वन वन में, अच्छा वो है पुरानी बात पै हो गया ना, वह पे बताना, अच्छा नेक्स्ट है वैराग, तो सबसे पहले बताया, नेक्स्ट है विक्रम विनाशक स्थिति, विक्रम विनाशक स्थिति माना मतलब कि पाप है तो बाप नहीं और बाप है तो पाप नहीं, अगर योगी बनना है ना शौक है तो किसी भी विक्रम का अंश होगा ना विकार का, फिर योग नहीं लगेगा, योग कट हो जाएगा, आप करके देख लेना, जिस दिन आप थोड़ा भी कोई क्रोधित हुए या कुछ हुए आप देखना आपका योग कट हो जाएगा, सभी विकारों की अंश की चेकिंग चाहिए फिर आप बन सकते हैं, तो विक्रम विनाशक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें विक्रम विनाशक स्थिति होगी तब निरंतर योगी बनेंगे, सब विकारों पर विजय, ठीक है। और लास्ट बताइए वे पर, विजय रतन तो आ गया पॉइंट, वो बताने जो नहीं आई, वन प्रस्थ और वशीकरण मंत्र और नेक्स्ट है लास्ट दैट इज द हैं जी हाँ वो हो गया सेवा विश्व कल्याण। लास्ट है व्यर्थ पर विजय। ब्राह्मणों को तंग जो है ना विकल्प नहीं करते हैं, व्यर्थ अधिक करते हैं, वेस्ट जो है। बाबा को बाबा ने एक निर्मल शांता दादी से एक बार पूछा, बच्ची सारा दिन में कितना योग रहता है? तो उन्होंने बताया जैसे 4 घंटा या वट एवर, बाकी फिर क्या रहता है? तो बाकी बाबा को सेवा के संकल्प पूछो, आप चेक करना अगर आप घंटे में 20 मिनट योग लिखते हैं तो बाकी क्या है। अच्छा वैसे भी माइन्यूटली कभी मन पे ऑब्जर्वर बन के चेक करना, 1 घंटे में व्यर्थ संग जिनकी जरूरत नहीं थी, व्यर्थ माना बिना अर्थ के, अर्थ रहित, जरूरत नहीं थी काम का, या तो उसमें पास्ट की कोई बात याद आएगी या कभी फ्यूचर की कोई चिंता होगी या कोई खाम खा के विचार चलते रहेंगे। आप ट्रेन से जा रहे, कभी कोई सीन देखा, कभी कोई उस पर चिंतन चलता ही जा रहा है, वो देखो खेत, वो देखो पानी भर गया, वो देखो ये हो गया, तो व्यर्थ ही तो है ना सारा। व्यर्थ पे बड़ा टेंशन चाहिए। निरंतर योगी वाले को नो वेस्ट, और उसका तरीका हर वक्त बिजी रखो अपने को, बाबा को पढ़ाई में, लिखाई में, पढ़ना लिखना सुनना सुनाना, इन 4 चीजों में बिजी रखो, अध्ययन करो बाबा की लिटरेचर का, मुरलियों का, पढ़ना लिखना, लिखने से बहुत अच्छा रहता है, और सुनना बड़े प्यार से सुनना है ना, और फिर सुनाना भी दिल से सुनाना, इन 4 चीजों में बिजी रहेंगे ना तो व्यर्थ बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये थे 10 सूत्र किस चीज के, निरंतर योगी बनने, आप यूज करना इनको तो निरंतर योगी बन जाए। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। कोई भी भाई बहन उठेंगे नहीं, कुछ सूचना ही है आपके लिए, वो सुन के ही जाएंगे। और उससे पहले हम अपने आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं, एक हाथ की ताली से। इतना गहरा विषय जिसको हम सब बड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन भाई साहब ने बड़ी सरल विधि से निरंतर योगी बनने की विधियां हम सबको स्पष्ट की, तो भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है।